नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वो अंडे निकले, अंडे के पक्षी वो शमीक ऋषि लेकर अपने आश्रम में आ गए थे। और याज्ञवल्क्य जी उन सब घटनाओं को बताते हैं और जैमिनी ने उन पक्षियों से बातचीत की और खास बात ये थी कि द्रौपदी के पांच पति कैसे हुए। वहां बताया कि पांच इंद्र ही थे और द्रौपदी शची थी, इसलिए एक स्त्री के एक ही पति हुए हैं। इंद्र अपने वायु के अंदर प्रवेश करके और भीमसेन बना है, अपने स्वयं के द्वारा अर्जुन बना है, अश्विनी कुमारों में प्रवेश करके वो मातृपुत्र नकुल सहदेव बने, यमराज में प्रवेश, धर्मराज में प्रवेश करके वे युधिष्ठिर बने। ये एक चैप्टर पूरा हुआ। अब वो पक्षी आगे बात बोलते हैं कि सुनो, पहले की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से एक बहुत बड़े राजा हुए। राजा क्या, वे तो राजर्षि थे, बड़े धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, बड़ी विलक्षण उनकी कीर्ति, हर दृष्टि से भी श्रेष्ठ थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं हुई। देखो, अकाल मृत्यु का अर्थ क्या होता है? अकाल मृत्यु का अर्थ होता है आप घात नहीं करना। लोग देखते हैं कि थोड़े समय में जवानी में मर गया, ये अकाल मृत्यु नहीं है, उसका तो काल वही था। अकाल मृत्यु होती है जानबूझ करके मरना। एक 95 वर्ष का आदमी जान करके मरता है तो अकाल मृत्यु है, और एक 20 वर्ष का बच्चा वो यदि बीमारी से मरता है तो वो उसकी सामान्य मृत्यु है। ये अकाल मृत्यु में उसमें भेद है। तो मनुष्य कभी अकाल मृत्यु से नहीं मरते थे, पूर्वासियों की कभी अधर्म में रुचि नहीं हुई। उस समय प्रजा के पास खूब धन था, लोग तपस्वी भी होते थे पर उन्मादी नहीं होते। कोई भी ऐसी स्त्री नहीं देखी जाती थी कि जो पूर्ण युवावस्था को प्राप्त किए बिना ही संतान को जन्म देवे, ऐसी नहीं। ऐसे समय में एक दिन की बात है, महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बार बार कुछ स्त्रियों की दयापूर्ण बातें सुनी। वे स्त्रियां जोर जोर से चिल्ला रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ, कोई सुनता है तो हमारी बात सुनो, हमको बचाओ। राजा के हृदय में वो शब्द चुभ गए। राजा ने अपना शिकार तो छोड़ दिया और जिधर से स्त्रियों की आवाज आ रही थी उधर की तरफ उन्होंने अपनी आवाज करके कहा, डरो मत, ऐसा कौन दुष्ट है जो मेरे शासन में अन्याय करता है और वो भी स्त्रियों पर अन्याय करता है, अभी देखता हूं। यूं कहकर स्त्रियों के रोने का शब्द जिधर से आ रहा था उसी रास्ते की ओर बड़ी तेज गति से चल दिया। इसी बीच प्रत्येक कार्य में बाधा उपस्थित करने वाला विघ्नराज सोचने लगा, ये महर्षि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी हैं और अनुपम तपस्या का आश्रय लेकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए उन भवादि विद्याओं का साधन करते हैं जो पहले इन्हें सिद्ध नहीं हो सकी। ये महर्षि क्षमा मौन आत्म संयम पूर्वक जिन विद्याओं का साधन करते हैं वे उनके भय से पीड़ित होकर ये विलाप कर रही है। इनके उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिए, ऐसा विचार करके रुद्र कुमार विघ्नराज ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। देखो ये सामान्य स्त्रियां नहीं थी, विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो ये क्षमा है संयम है इनकी जो विद्या है मौन विद्या, ये स्त्रियां बनकर चिल्ला रही थी। उनके आवेश युक्त सुनना राजा में उनके आवेश युक्त वचनों को सुनकर राजा ने क्रोध पूर्वक कहा, ये कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़े की गठरी में आग को बांध रहा है? ये हरिश्चंद्र बल और प्रचंड तेज से प्रदीप्त है, आज ऐसा कौन सा पापी जो मेरे धनुष से छूटकर सब दिशाओं में देदीप्यमान करने वाले बाणों से सर्वांग छिन्न भिन्न होकर कभी न टूटने वाली निद्रा में प्रवेश करना चाहता है? कौन है ऐसा आदमी, अर्थात अब वो मरने वाला है। राजा की ये बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो गए, उनके मन में क्रोध पैदा हुआ क्योंकि वे संपूर्ण विद्याएं जो स्त्री के रूप में रो रही थीं, स्त्रियों के रूप में रो रही थी, क्षण भर में अंतरित हो गई। तदनंतर राजा ने उन तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र की ओर दृष्टिपात किया तो बड़े भयभीत हो गए और सहसा पीपल के पत्ते के भांति थर थर कांपने लगे हरिश्चंद्र। इतने में विश्वामित्र बोल उठे, ऐ दुरात्मन खड़ा रहे, कैसे ललकार रहा था? तब राजा ने बड़े विनय के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान यह मेरा धर्म था, प्रभु इसे आप अपराध न माने, अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझ राजा पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। हे ऋषिवर, आप तो धर्म की मर्म की बात जानने वाले हैं, धर्मज्ञ राजा को तो ये उचित ही है कि वे धर्मशास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध भी करे। विश्वामित्र बोले, राजन यदि तुम्हें अधर्म का डर है तो शीघ्र बताओ किसको दान देना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किनके साथ युद्ध करना चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, हे ऋषिवर, क्रोध को शांत कीजिए और मेरे वचनों को आप ध्यान से सुनकर उनकी परीक्षा कीजिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को जिसकी कोई आजीविका नहीं है ऐसे मनुष्य को भी दान दिया जा सकता है, या तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो या जिनकी कोई आजीविका नहीं है ऐसे मनुष्य को दान देना चाहिए। और जो भयभीत प्राणी है, डर रहे हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ युद्ध करना चाहिए। दातव्यम विप्र मुख्येभ्यो ये चान्ये कृषवृत्तय है, रक्षा भीता सदा युद्धम कर्तव्यम परिपंथी भी। विश्वामित्र बोले, यदि तुम राजा हो और राजधर्म को भली भांति जानते हो तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूं, मुझे इच्छा अनुसार दक्षिणा दो। उन पक्षियों ने कहा, महर्षि की बात सुनकर राजा ने अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्न चित्त से कहा। हरिश्चंद्र बोले, भगवान आपको मैं क्या दे सकता हूं? आपने जब इतना आदेश दिया तो आप आदेश दीजिए, निसंकोच से आप मुझे कहिए, ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है जो मेरे पास हो और मैं आपको दे न सकूं। यदि मेरे पास है तो आप उसको दीवी समझो। विश्वामित्र ने कहा, राजान सोच समझ करके बोलना, हम तपस्वी विश्वामित्र हैं, तुम देने की बात कहते हो, सोच लो, हो सकता है तुम्हारे देने में फिर संकोच हो, हम तुम्हें खुला करते हैं। बोलिए, सोच के कहा है? हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज आपका काम आदेश देने का है, जो मेरे पास है उसे आप अपनी ही मानिए तो ठीक है। तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरों सहित ये सारी पृथ्वी मुझे दे दो, रथ, घोड़े, हाथी, कोठार, खजाना, सारा राज्य मुझे दे दो। इसके अतिरिक्त जो भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, केवल अपनी स्त्री, अपना पुत्र और शरीर को अपने और शरीर, ये तीन आप अपने पास रख सकते हो, इसके अलावा कोई चीज तुम्हारे पास नहीं रहेगी। हां, तुम्हारे अंदर जो धर्म है उसको तुम रखो, क्योंकि धर्म को कभी कोई अपने से अलग कर नहीं सकता है, धर्म सदा कर्ता के साथ रहता है। लोक परलोक में यही हमारा साथ देने वाला होता है। राजा ने कहा, बस महाराज इतना ही मांगा? विश्वामित्र ने कहा, राजन तुम्हारे चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं महाराज, आपकी आज्ञा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, मुझ पर आपने बड़ी कृपा की है। विश्वामित्र बोले, राजर्षि यदि तुमने अपना राज्य, पृथ्वी, सेना, धन, सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है तो मुझ तपस्वी के पास इस राज्य में रहते किसका प्रभुत्व रहा? मैंने जिस समय ये पृथ्वी दी है उसी समय आप मेरे स्वामी हो गए और मैं आपका सेवक हो गया, फिर आपके इस पृथ्वी के राजा होने की बात ही क्या है, आप ही तो राजा हो अब। विश्वामित्र बोले, अच्छा यदि तुमने सारा राज्य, पृथ्वी मुझे दान कर दी है तो जहां जहां मेरा प्रभुत्व है वहां से हम तुमको निकाल देना चाहते हैं, तुमको मेरे राज्य में अब यहां नहीं रहना होगा। उतारो तुम्हारे आभूषण, क्योंकि आभूषण तुमने मेरे पहन रखे हैं, उतारो। केवल लज्जा के लिए वस्त्र लपेट सकते हो और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जहां तक मेरा राज्य है वहां तक तुम सीमा को पार करके चले जाओ। राजा ने कहा, बहुत अच्छा महाराज। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व को साथ लेकर जाने लगे। उस समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोक कर कहा, अय मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना कहां जा रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, भगवान ये अकंटक राज्य मैंने आपको दे दिया, अब तो मेरे पास केवल ये तीन शरीर हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, अब मैं आपको दक्षिणा क्या दे सकता हूं? नाइन, तुमने हमको राज्य दिया, यज्ञ किया है, इसकी दक्षिणा तो हमें देनी होगी। हम ब्राह्मण हैं, दक्षिणा लेंगे। ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि न दिया जाए तो प्रतिज्ञा भंग का उस व्यक्ति को पाप लगता है और उससे उस व्यक्ति का नाश होता है। राजस्व यज्ञ में ब्राह्मण को जितने से संतोष हो उतनी दक्षिणा देनी होगी। ले अब वो काहे संतोष करे? राजस्व यज्ञ में ब्राह्मणों को जितने धन से संतोष होता है उस यज्ञ की उतनी दक्षिणा देनी चाहिए। तुमने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना चाहिए, आत्ताइयों से युद्ध करना चाहिए और आर्तजनों की रक्षा करनी चाहिए। हरिश्चंद्र ने नम्रता से कहा, भगवान आपके सामने खड़ा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी प्रतिज्ञा करता हूं समय यदि आएगा तो ये भी आपको दे दूंगा। समय? तुम तो उल्टा मेरे से समय मांग रहे हो। मैं तुमसे देने की आशा करता हूं कि तुम मुझे कुछ दोगे और तुम ही मुझसे सब मांग रहे हो। अरे समय तो बहुत कीमती होता है, ये धन, ये संपत्ति, ये राज्य, ये समय है तो है, तेरे जीवन का समय है तो तूने मुझे दिया, मेरे जीने का समय है तो इसलिए मैंने लिया। लेकिन समय तुम्हारे पास नहीं होता तो क्या देते? यदि मेरा भी शरीर नहीं होता इस समय तो मैं क्या लेता? तुम समय मांगते हो? बताओ बताओ बताओ, फिर कितना समय लेना चाहते हो? हड़बड़ाहट में हरिश्चंद्र बोले, महर्षि कृपा कीजिए, मैं एक महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दे दूंगा। इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। विश्वामित्र एक महीने की पूरी प्रतीक्षा करेगा। विश्वामित्र ने जब जाओ कह दिया, आज्ञा दे दी, तब राधा हरिश्चंद्र उस नगर से चल दिए। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शैव्या भी चली, जो पैदल चलने योग्य नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकलते देखकर उनके अनुयायी सेवकगण पूर्वासी सब विलाप करने लगे, हे महाराज, इस प्रजा को आप अनाथ कर रहे हैं, हम पीड़ितों को आप क्यों छोड़ रहे हैं, हम लोगों का क्यों परित्याग कर रहे हैं, आप धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, इन नगरवासियों पर सदा आपकी कृपा रही है, हे राजर्षि, यदि आप धर्म समझते हो तो हमें भी साथ में ले लीजिए। महाराज दो घड़ी तो ठहर जाइए, हमारे नेत्र रूपी भ्रमर आपके मुखारविंद की रूप सुधा का पान कर ले, फिर हमें कब आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ, जिन महाराज के आगे आगे चलने पर पीछे से कितने राजा लोग चलते थे, आज उन्हीं के पीछे केवल उनकी पत्नी और एक छोटा सा बालक गोद में वही जा रही है। आपकी यात्रा के समय जिनके सेवक हाथियों पर बैठकर आगे चलते थे वे ही आज आप पैदल चल रहे हैं। हे महाराज, मनोहर भौवों, चिकनी त्वचा तथा ऊंची नासिका से सुशोभित आपका सुकुमार मुख मार्ग में धूलि से भर जाएगा, श्वेत पसीना आने से आपकी कैसी दशा हो जाएगी। हे महाराज, हमारा कलेजा फटता जा रहा है, ठहर जाइए, यही अपने धर्म का पालन कीजिए। क्रूरता का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। आप इतने कठोर मत बनिए, क्षत्रियों के लिए तो यही सबसे बड़ा उत्तम व्रत है। अब हमें स्त्री पुत्र धन धान्य आदि से क्या लेना है, ये सब छोड़कर हम लोग आपके साथ छाया के भांति रहेंगे। हे नाथ, हे महाराज, हे स्वामिन, आप हमको त्याग कर मत जाओ। जहां आप जाओगे वही हम रहेंगे। जहां आप हैं वहां आनंद है, जहां आप हैं वही नगर है, और जहां हमारे महाराज है वह हमारे लिए स्वर्ग है। पूर्ववासियों की बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र शोक में डूब गए, दया आई, मार्ग में उस समय ठहर गए। विश्वामित्र ने देखा कि राजा का चित्त पूर्ववासियों के वचनों से व्याकुल हो रहा है, तब वे उसके पास पहुंचे और बड़े क्रोध के अंदर कहने लगे, आंख फाड़ फाड़ करके, अरे बड़ा धर्मात्मा मानता है तू, तो बड़ा दुराचारी, झूठा कपटी निकला, धिक्कार है तुझे, जो मुझे राज्य देकर फिर वापस प्रजा की ओर देखता है, यहीं खड़ा है, तेरे जाने की इच्छा ही नहीं होती। विश्वामित्र का कठोर वचन सुनकर राजा कांप उठे के, महाराज जा रहा हूं, जाता हूं। इतना कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचते हुए शीघ्रता पूर्वक चले। राजा अपनी पत्नी को खींच रहे थे, वो सुकुमारी अबला चलने के परिश्रम से थक कर व्याकुल हो रही थी, तो भी विश्वामित्र ने सहसा उसकी पीठ पर डंडे से प्रहार किया, बड़ा महारानी का घमंड आता है, निकल यहां से। महाराज हरिश्चंद्र ने बड़े दुख से आतुर होकर केवल इतना ही कहा, भगवान जा तो रहा हूं, उनके मुख से और कोई बात निकल नहीं निकली। उसी समय परम दयालु पांच विश्वे देव आपस में कहने लगे, ओ विश्वामित्र को ज्ञान नहीं है कि पापी कौन है, ये किसको पापी समझता है, ये विश्वामित्र स्वयं ही तो पाप कर रहा है और हरिश्चंद्र जैसे को पापी बता रहा है, जाने किस लोक में जाएगा। इसने यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ ऐसे महाराज हरिश्चंद्र को अपने राज्य से नीचे उतार दिया छोटी सी बात पर। विश्वेदेव ये बातें कर रहे थे तो विश्वामित्र को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने उन सबको शाप देते हुए कहा, तुम विश्वेदेव हो, देवयोनि में हो, उतरो नीचे, शाप देता हूं, जाओ तुम मनुष्य हो जाओ। उनका, महाराज हम तो आपस में बात कर रहे थे, हमको पापी बताते हो, तुम हमारा निर्णय करने चले हो, जाओ मनुष्य बन जाओ। बार बार उन्होंने विनय किया, विश्वामित्र ने कहा ठीक है, मनुष्य हो जाओगे, तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारे कोई विवाह नहीं होगा, और जब संतान नहीं होगी, तुम्हारा विवाह नहीं होगा, तो किसी के प्रति ईर्ष्या भी नहीं होगी, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं होगा, क्योंकि परिवार में स्त्री पुत्र आदि में ईर्ष्या द्वेष आदि होते रहते हैं, और ऐसा तुम्हारे अंदर नहीं होगा, तो फिर तुम वापिस देवत्व को प्राप्त हो जाओगे। वे विश्वेदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए, वे ही द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न पांचों पांडव राजकुमार थे। देखो कहां की कथा लाकर कहां टिक गई है। मैं ही नहीं समझ रहा ये कथा क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। ये विश्व देव है, ये अवतीर्ण हुए थे और फिर इनको अश्वत्थामा ने मारा था। अश्वत्थामा गया था पांच छोटे छोटे बच्चे, भागवत में सुनते हैं आप। अब छोटे बच्चों को ही मार दिया तो क्या उनके हुआ? महामुनि विश्वामित्र के शाप से उनका विवाह नहीं हुआ। इस प्रकार हमने तुमको पांडव कुमारों की कथा से संबंध रखने वाली बातें बतला दी, अब बोलो और क्या सुनना चाहते हो? जयमिनी बोले, महाराज आपके प्रश्न से, आपके बोलने से मेरे उन प्रश्नों का तो उत्तर हो गया, किंतु हरिश्चंद्र की जो कथा आप सुना रहे थे उससे तो मेरा हृदय एकदम घबरा गया। बड़ा कौतूहल हो रहा है, ऐसे पवित्र महात्मा, ऐसे श्रेष्ठ राजा, उनको इतना बड़ा कष्ट हुआ है। हे श्रेष्ठ पक्षियों, क्या उन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी प्राप्त हुआ जीवन में? जैसा ये दुख मिला, क्या ऐसा उनको जीवन में कहीं सुख भी मिला? विश्वामित्र का चरित्र हमको सुनाइए। पक्षियों ने कहा, विश्वामित्र की बात सुनकर दुखी हुए राजा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे नन्हे से पुत्र को गोद में लिए हुए रानी शैव्या चल रही थी। दिव्य वाराणसी पुरी के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया कि यह काशी मनुष्य की भोग्य भूमि नहीं है, इस पर केवल शूलपाणि भगवान शंकर का ही अधिकार है, अतः ये मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपने अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। अब पुरी में प्रवेश करते ही वे विश्वामित्र फिर सामने आकर खड़े हो गए। उन्हें देख करके राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए और बोले, हे ऋषिवर, मेरे प्राण, मेरा शरीर, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी यहां प्रस्तुत है, अब बताओ आप हमसे क्या मांगने आए हो? आपको क्या आवश्यकता है? ये अभी तीन है, हम जिसकी आवश्यकता हो उसे आप अर्घ्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हो तो वो आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र बोले, राजर से भूल गए, तुमने हमको राजसूय यज्ञ की दक्षिणा देने के लिए कहा था और एक महीना मांगा था, कहां गया तुम्हारा एक महीना? तुमको यदि याद नहीं है तो हम तुमको याद दिला रहे, तुमने एक महीने का समय मांगा था ना? हाँ, पर हे ऋषिवर, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, अभी आधा दिन तो बाकी है, थोड़े आधे दिन की तो प्रतीक्षा कीजिए। विश्वामित्र अट्टहास से बोले, अरे एक महीने में तू कुछ नहीं कर सका, तेरे पास सिवाय तेरे और स्त्री और पुत्र के शरीर के अलावा कुछ नहीं है, अब तू थोड़े से समय में क्या करेगा? चल हम थोड़ी देर ये भी प्रतीक्षा कर लेते हैं। याद रखना, यदि आज का दिन पूरा हो गया और मुझे दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हें घोर से घोर शाप दूंगा। यूं कहकर विश्वामित्र जी चले गए। उस समय राजा चिंता में पड़ गए कि स्वीकार की हुई दक्षिणा कैसे दूं, मेरे पास क्या है, क्या मैं प्राण त्यागूं? पर यह तो कायरों का काम है, ये नीच प्रकृति का काम है, प्राण त्यागना अपने तरफ से जानबूझ करके प्राण त्याग। इस अकिंचन दशा में किधर जाऊं, और यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा के बिना ही मर जाऊंगा तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधम से अधम, अधम से अधम कीट योनि में जन्म लेना पड़ेगा, अथवा यह दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर किसी की दास्ता स्वीकार कर दूं, ये बात कुछ ठीक लगती है, इसलिए अपने को बेच देना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल होकर दीन नीचा मुख किए हुए इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उस समय पत्नी ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में कहा, महाराज चिंता छोड़िए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वह व्यक्ति तो श्मशान के समान त्याग देने योग्य है। हे नरश्रेष्ठ, पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया। जिसका वचन निरर्थक हो जाता है उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय, ध्यान, संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार जिसका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। कृति नाम के राजा 7 अश्वमेध और 1 राजसु यज्ञ का अनुष्ठान करके भी एक बार असत्य बोले गए थे तो वे स्वर्ग से नीचे गिर गए। महाराज मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है, इतना कहकर रानी सेव्या फूट फूट कर रोने लगी। हरिश्चंद्र बोले, कल्याणी संताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती हो साफ साफ कहो। रानी ने कहा, महाराज मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है, श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बतलाते हैं, जब ये फल आपको मिल चुका है अतः मुझको भी आप बेच सकते हैं और ब्राह्मण को दक्षिणा चुका सकते हैं। महारानी की ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। फिर होश में आने पर दुखी होकर विलाप करने लगे, विकल्याणी ये महान दुख की बात है जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। यूं कहकर नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र पृथ्वी पर गिरे और फिर मूर्छित हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देखकर रानी बड़ी दुखी होकर करुणा के साथ बोली, हे महाराज ये अपने कौन से पाप का फल प्राप्त हुआ है? आप तो रंकु नामक मृग के रोए से बने हुए कोमल और चिकने वस्त्र पर शयन करने योग्य थे, किंतु आज भूमि पर पड़े हैं जहां कंकड़ पत्थर आपके शरीर में चुभते हैं। आपने करोड़ों से अधिक गोधन ब्राह्मणों को दिया है, फिर आपके ऊपर हे महाराज इतना संकट कैसे हुआ? ये कितने कष्ट की बात है। मैं मानती हूं ये भाग्य का एक दृश्य है, भाग्य में जो होता है वो होकर ही रहता है। ए दुर्भाग्य, इन महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा, जो इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी यहां ऐसी दशा में पड़े आज स्वयं बिकने के लिए या अपने पत्नी को बेचने के लिए आए हैं। वो पत्नी भी असह्य दुख के बोझ से पीड़ित होकर गिर गई और मूर्छित हो गई। इसी बीच विश्वामित्र जी आ गए। मूर्छित पड़ा देखकर विश्वामित्र जी ने जल के छींटे डाले और कहा, हे राजेंद्र उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि नींद पर ही रहेगी तो मेरी दक्षिणा कब दोगे, और यदि दृष्टि धर्म पर है तो तुम्हारे द्वारा कही हुई दक्षिणा हमको मिलनी चाहिए। असत्य महान पाप होता है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1 सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध से सत्य भारी सिद्ध होगा। हे महाराज, यदि आप मुझे दक्षिणा नहीं दोगे तो सूर्यास्त होते ही मैं आपको निश्चित रूप से शाप दूंगा। मैं आपको सावधान करने आया हूं, आप सूर्य की ओर देखिए कि अब अस्ताचल की ओर जा रहा है और आपके पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र चले गए। हरिश्चंद्र व्याकुल से भय से व्याकुल हो गए, सोच रहे हैं हाय मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी दशा क्रूर स्वभाव वाले धनी से पीड़ित निर्धन मनुष्य की सी हो रही थी। पत्नी ने फिर कहा, नाथ मेरी बात मान लीजिए, अन्यथा आपको शाप की अग्नि में और जलना पड़ेगा। तब राजा बोले, कल्याणी मैं बड़ा निर्दयी हूं, संसार में शायद ही कोई ऐसा पुरुष हुआ होगा जो आज मेरे जैसा काम करेगा। लो मैं तुम्हें बेचने चलता हूं। ऐसा कठोर से कठोर व्यक्ति भी ऐसा काम नहीं कर सकती, वो काम आज मैं करूंगा। पत्नी से यूं कहकर राजा व्याकुल चित्त से नगर में आए और नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले, ओ नागरिको, तुम सब लोग मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरा परिचय पूछना चाहते हो तो सुनो। मैं मनुष्य नहीं एक महान क्रूर प्राणी हूं, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी श्रेष्ठ गुणों वाली पतिव्रता पत्नी को यहां बेचने के लिए आया हूं। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी इस प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो जल्दी से जल्दी आप मेरे पास आओ। मैं इस असह्य दुख में भी जब तक जीवन धारण किया हूं तभी तक आप मेरे से बात कर ले, नहीं तो अभी मेरे प्राण निकलने वाले हैं। उसी समय एक बुढ़ा ब्राह्मण सामने आया, राजा से बोला, राजन बोलो, दासी को मेरे हवाले करो, मैं इसे खरीदता हूं, बहुत धन है। मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है, वो घर के कामकाज नहीं कर सकती, इसलिए मुझे दासी की जरूरत है, और तुम्हारी पत्नी यहां दासी बन जाएगी तो मेरा घर एकदम आनंद से भर जाएगा। तुम अपनी इस पत्नी की कार्य दक्षता अवस्था और इसका रूप और स्वभाव उसके अनुसार जो भी तुम धन लेओ लेओ, परंतु ऐसी दासी हमारे लिए हवाले कर दो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र का दुख और ज्यादा बढ़ गया। वे बोलना चाहते हैं, बोला नहीं जाता है। उनके दोनों ऊपर और नीचे के दांत एकदम चिप से गए। उस समय ब्राह्मण ने राजा के वलकल वस्त्र में उस धन को अच्छी तरह से बांध दिया जो उनकी पत्नी को खींचकर वे अपने साथ ले चला था। माता को इस दशा में देखकर बालक रोहिताश्व रो उठा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। मां, मुझे छोड़कर कहां जाती हो? रानी ने कहा, बेटा आओ, बस एक बार जी भर करके देख लो। अब तुम्हारी मां एक दासी हो चुकी है। तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श मत करो। तुम बड़े हो, मैं अब छोटी हो गई। अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य नहीं रही, क्योंकि कोई भी दासी राजकुमार का स्पर्श नहीं कर सकती। फिर सहसा अपनी माता को खींच कर ले जाते हुए देख करके रोहिताश्व बालक फिर बोला, मां मां मां, मैं क्या करूं? दौड़ा और उसके नेत्र से आंसू बह गए। बालक पास में आया। उस ब्राह्मण ने क्रोध भर करके उसकी ओर, चल यहां से, आया है मां मां करने वाला, कहां तेरी मां? लात से मारा। छोटा बच्चा गिर गया, परंतु अपनी मां को नहीं छोड़ा। मां मां, रानी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामी मैं तो आपकी दासी हो चुकी, ये बच्चा मेरे बिना कैसे रहेगा? इस बालक को भी खरीद लीजिए ना। यदि भी आपने मुझे खरीद लिया है, मैं आपकी दासी हूं, दासी को किसी प्रकार सलाह देने का अधिकार नहीं है, फिर भी आपसे विनय करती हूं, इस बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह से कर भी नहीं सकूंगी। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी अभागिनी हूं, आप मुझ पर दया करो, प्रसन्न हो जाओ। एक मां अपने बच्चे के बिना कैसे रहेगी? बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिला दीजिए। ब्राह्मण बोला, ठीक है, हे राजन, ये धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले कर दो। यूं कहकर उसने पूर्ववत राजा के उत्तरी खंड में वह धन और बांध दिया और बालक को उसकी माता के साथ लेकर चल दिया। पत्नी और पुत्र को ले जाते हुए देख राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कातर हो गए और विलाप करते हुए कहने लगे, हाय, पहले जिसे वायु सूर्य चंद्रमा तथा बाहरी लोग कभी देख नहीं सकते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी बन गई और मैं देख रहा हूं। मेरे आंखों के सामने मेरी पत्नी दासी हुई। इसके माता पिता ने मुझे राजा समझ करके अपनी पुत्री दी थी और मैंने उनकी पुत्री को आज दासी बना करके भेज दिया, जिसके हाथों की अंगुलियां अत्यंत सुकुमार हैं, वे सूर्य वंश में उत्पन्न मेरा बालक आज बेच दिया गया है। हे प्रिय, हा पुत्र, हा वत्स, विचार कर लो इस संसार में मुझसे भी कोई नीच पुरुष है क्या? पर मैं भी क्या करूं, प्रारब्ध के अधीन हूं और मुझे इस दशा को भोगना पड़ता है। देखो चाहते हुए भी आज मृत्यु नहीं आती है। यदि मृत्यु आ गई होती तो ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसे विलाप करते थे। इतने में ही वो ब्राह्मण उन दोनों को साथ लेकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और घर आदि की ओट में छिप गया। वह बड़ी शीघ्रता से चल रहा था। तदनंतर विश्वामित्र वहां पहुंच गए और राजा से कहा, राजान सूर्य की तरफ देख लिया ना, सूर्य अस्त हो गया ना, लाओ मेरा धन लाओ। हरिश्चंद्र के पास जो भी धन समर्पित था वो दे दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को थोड़ा देख करके कौशिक मुनि विश्वामित्र जी शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहने गए, हे नीच क्षत्रिय, क्या यही मेरे लिए दक्षिणा है? इतनी सी दक्षिणा से क्या होता है? यदि ऐसी बात है तो देख मेरा बल, देख अपनी भली भांति की हुई तपस्या का, एक निर्मल ब्राह्मणत्व का, एक उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्वभाव का बल तुझे दिखाता हूं। हरिश्चंद्र, महाराज रहने दीजिए, हे ऋषिवर, मैं आपके प्रभाव को यूं ही जानता हूं, मेरा इस समय दुर्दैव मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए, मैं और भी दक्षिणा दे दूंगा। इस समय मेरे पास और कुछ भी वस्तु नहीं है, अब मेरी पत्नी भी बिक चुकी है, मेरा पुत्र भी बिक चुका है। विश्वामित्र ने कहा, अच्छी बात, वैसे पूरी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, बस थोड़ा समय और है, मैं भी प्रतीक्षा करता हूं, ज्यादा कुछ मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आज का आज सूर्यास्त से पहले पहले पूरी मेरे मन को तृप्ति हो उतनी दक्षिणा लूंगा ही। हरिश्चंद्र से इस प्रकार निर्दयतापूर्ण और निष्ठुर वचन कहकर उस धन को भी ले लिया और कोप से भरे हुए नेत्रों से बार बार विश्वामित्र हरिश्चंद्र की तरफ यूं देख करके और चल दिए। उनके जाने पर राजा के मन में और भय पैदा हो गया, शोक पैदा हो गया कि किसी के मन को कैसे तृप्त कर सकते हैं, ये तो मन से तृप्त होने वाली दक्षिणा चाहते हैं, दक्षिणा का कोई इतिक सीमा नहीं है, ये तो कर क्या करूं, मेरे पास क्या है? बहुत दुखी होकर अपना मुंह नीचा करके अपने शरीर में जितनी ताकत थी उस ताकत से उन्होंने जोर से कहा, सुनो, जो मनुष्य मुझे धन से खरीद कर दास का काम लेना चाहता है वो जल्दी से जल्दी मेरे पास आए और सूर्य के रहते रहते मुझे खरीद ले और वो बोल दे, जो ज्यादा कीमत देगा मैं उसका दास बन जाऊंगा। उसी समय एक चांडाल वहां आया। उस चांडाल के शरीर से दूर से दुर्गंध आ रही थी, उसका मुंह बड़ा विकृत था, रूखा बदन, दाढ़ी मूछे बेढंगे ढंग से बढ़ी हुई और दांत होठों से कितने ही बाहर आए हुए, निर्दयता की मानो मूर्ति, काला कलूटा, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए रूखे नेत्र, कठोर वाणी, यह उसका हुलिया था। उसने झुंड के झुंड पक्षियों को एक पिंजरे में पकड़ रखा था और मुर्दों पर जो माला चढ़ी हुई होती है उस माला को उसने पहन रखा था। उसने एक हाथ में खोपड़ी, दूसरी हाथ में लाठी ले रखी थी। उसका मुंह भी बहुत बड़ा था, देखने में भयानक और बारंबार बहुत बकवाद करने वाला, कुत्तों से घिरा हुआ। उसकी भयंकरता देखकर तो कोई भी डर सकता है। वो चांडाल बोला, कौन हो तुम? मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम शीघ्र अपनी कीमत बताओ, थोड़ा हो ज्यादा हो, मुझे तो आवश्यकता है, जितने धन से तुम तृप्त हो सको बोलो, कितना चाहिए उतना धन देता हूं। चंडाल की आंखें इतनी क्रूर थी, इतना निष्ठुर बोलता था, बड़ा अत्याचारी दुराचारी प्रतीत होता था। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? मैं चंडाल हूं। इस श्रेष्ठ नगरी में मुझे सब लोग प्रवीर के नाम से पुकारते हैं। जिन मनुष्यों का वध करना होता है उनका वध मैं करता हूं, और मुर्दों का वस्त्र लेना मेरा पहला काम है, प्रसिद्ध काम है, क्योंकि मुर्दे का कपड़ा कौन पहनेगा मेरे अलावा? कोई नहीं पहन सकता। हरिश्चंद्र बोले, मैं चंडाल का दास नहीं होना चाहता, क्योंकि यह तो बहुत निंदनीय कर्म है। मैं शाप की अग्नि से जल जाऊंगा, लेकिन चंडाल के अधीन होना कदापि अच्छा नहीं है। मुझे विश्वामित्र जी जला देंगे, जला देंगे। चंडाल का सेवक कैसे बनूं? बस ये बात बोली रहे थे कि विश्वामित्र जी आ धमके, क्रोध और अमर्ष से आंखें फाड़कर बोले, ये चांडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित हुआ है और तुम शाप की अग्नि में जल भून जाना अच्छा मानते हो, लेकिन एक ब्राह्मण के सामने की हुई प्रतिज्ञा को छुटाना चाहते हो? मरो तो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके मरो, ले ओ चंडाल का धन, तुम्हारी क्या इसमें दोष लगता है, तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाएगी, उसे ग्रहण करो और मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा दे। क्यों देरी करते हो? यदि तुम चंडाल के हाथ अपने को बेचकर उससे मिलावा मुझे धन नहीं दोगे तो बस अब मेरे मुंह से शाप निकलने ही वाला है। हरिश्चंद्र ने कहा ब्रह्मर से, मैं आपका दास हूं, मैं दुखी हूं, मैं भयभीत हूं, हे ऋषिवर मैं आपका भक्त हूं, आप मुझे कृपा करें, ये चंडाल के कर्म में लगाना और चंडाल के संपर्क में आना ये आप आज्ञा देते हैं? मुनि श्रेष्ठ, शेष धन के बदले मैं अपने आपको अधीन कर देता हूं, मैं आपका काम करूंगा, आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपका दास बन जाऊंगा, जो दक्षिणा आप लेना चाहते हैं उस दक्षिणा में आप मुझे ले लीजिए। विश्वामित्र बोले, यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने 1 अरब स्वर्ण मुद्रा लेकर तुम्हें चंडाल को दे दिया, जाओ। मेरे दास हो ना तो मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। अब इस चंडाल ने मुझे दे दिया 1 अरब रुपया, बोलो 1 अरब रुपया नहीं, सोने की मुद्रा, 1 अरब, 100 करोड़, और मैंने खरीद लिया इससे, अब तुम इसके दास हो जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर चंडाल बड़ा प्रसन्न हो गया, उसने विश्वामित्र को धन दे दिया और राजा को बांध लिया और उन्होंने डंडों की मार से अचेत सा करता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। राजा की इंद्रियां व्याकुल हो गई और राजा हरिश्चंद्र चंडाल के घर में रहने लगे और रात दिन यही सोचा करते थे, हाय मेरी दीन दुखी पत्नी अपने आगे दीन मुख बालक रोहिताश्व को देखकर कैसी दुख में जी रही होगी। उस समय इस आशा से कि राजा धन कमाकर हम दोनों को छुड़ा लेंगे बारंबार मेरा स्मरण करती होगी, पर उसको ये पता नहीं होगा कि मैं ब्राह्मण को और भी अधिक धन देकर एक पापमय संसर्ग में चंडाल के घर जी रहा हूँ। राज्य का नाश हुआ तो हुआ, मित्रों का त्याग हुआ सो हुआ, पत्नी और पुत्र को भी बेच देना पड़ा और मैं एक चंडाल के यहाँ रहा। ओहो, एक के बाद एक की कैसी दुख की परंपरा आती है, क्या करूं।